नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियो को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।